ओम शांति। आज ये आपके सामने एक साइंटिफिक मूविंग मॉडल है सृष्टि चक्र के ऊपर। इस पर हम आपको काफी कुछ वैज्ञानिक बातें बताएंगे कि कैसे ये सृष्टि चक्र फिरता है। इसको समय का चक्र भी कहा जाता है, समय का चक्र। तो इसमें मॉडल छोटा इसलिए दूर से शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके पीछे एक चित्र है, वो मैंने अलग से भी लेके आया है। ये स्वस्तिका का चिन्ह है। ये तो सभी जानते हैं ना, शुभ लाभ लिखते हैं, कोई भी नया गृह प्रवेश करते हैं दिवाली के दिन या कोई भी नए कार्य होता है तो इस चिन्ह का अंकित करते हैं और लिखते हैं शुभ लाभ। अर्थात इस सृष्टि पर ऐसा एक समय आता है जिस समय हम आत्माओं को शुभ लाभ होता है, अर्थात वो शुभ घड़ी आती है। और वो शुभ घड़ी कौन सी है? अभी वर्तमान समय, जिस समय स्वयं निराकार शुभ परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के हम आत्माओं को वो शुभ अवसर प्रदान करते हैं जिससे हम आत्मा हम पति से पावन बन जाते हैं। तो हम आपको पहले यहां बताएंगे, ये देखिए ये जो स्वस्तिका का चिन्ह आपको दिखाया, तो इस स्वस्तिका के चिन्ह का जितना ज्यादा महत्व आध्यात्मिकता में है उससे कहीं ज्यादा इस चिन्ह का महत्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है। तो विज्ञान की दृष्टिकोण से ये पीछे अंकित स्वस्तिका का चिन्ह का क्या महत्व है, इस मॉडल के द्वारा हम आपको बताएंगे। देखिए हमारे इस सृष्टि पर निरंतर तीन प्रकार की घटनाएं घट रही है। इस सृष्टि पर निरंतर तीन प्रकार की घटनाएं लगातार एक साथ घट रही है। वो तीन घटनाएं कौन सी है? एक है ऐतिहासिक घटनाएं, हिस्टोरिकल इवेंट। दूसरा है भौगोलिक घटनाएं, ज्योग्राफिकल इवेंट। और तीसरा है खगोलीय घटनाएं, एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट। और इन तीनों घटनाओं के अंदर इस सृष्टि की सारी घटनाएं इसी के अंदर आ जाती है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ इस पूरी सृष्टि का जो खेल है केवल तीन ही बातों का खेल है, इतिहास, भूगोल और खगोल। अगर एक शब्द में परिभाषित किया जाए तो इतिहास का मतलब होता है कौन, हु इज हु। इतिहास का मतलब होता है कौन, भूगोल का मतलब होता है कहां, और खगोल का मतलब होता है कब। तो इतिहास, भूगोल और खगोल, कौन, कहां और कब। जबकि विज्ञान कहता है कि ये जो दुनिया है ये कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, एफर्ट एंड रिजल्ट की दुनिया है। इसी कोई मतलब इस दुनिया में बिना कारण का कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये हुआ। इसी कोई आध्यात्मिक भाषा में कहा जाता है कर्म और फल की दुनिया, बातें की है। अब चूंकि इस दुनिया में बिना कारण का कुछ होता ही नहीं है, तो ये जो तीनों घटनाएं हमने आपको सुनाई इसके घटने के पीछे भी जरूर कोई कारण होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में बिना कारण का कुछ होता ही नहीं है। तो इन तीनों घटनाओं के घटने के पीछे मूल कारण है हमारे इस साकार मनुष्य लोक की तीन विशेषताएं। देखिए तीन लोक का चित्र है हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय में, ये चित्र एक मुख्य चित्र है। तीन लोक, तीन ही लोक होते हैं। सबसे नीचे दिखाया है साकार मनुष्य लोक, ये पांच तत्वों की दुनिया है। इसके ऊपर एक सूक्ष्म लोक है और सबसे ऊपर इसके ऊपर भी परम धाम, जिसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं, शांति धाम भी कहते हैं। तो ये साकार मनुष्य लोक ये पांच तत्वों की दुनिया है। यहीं पर ही हम पांच तत्वों का ये शरीर धारण करके इस सृष्टि पर अपना अपना रोल प्ले करते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं। तो ये जो साकार मनुष्य लोक है इसकी तीन विशेषताएं हैं जो परमात्मा ने हमें सुनाई है, तीन ही विशेषताएं है ना। तो वो तीन विशेषताएं कौन सी है? सबसे पहली विशेषता है लाइट। ये जो बीच में यहां लाइट जलती हुई दिखाई गई है, ये सूरज दिखाया गया है। क्योंकि दुनिया में सूरज का प्रकाश है इसलिए दुनिया दिखाई देती है, दृश्यमान है, विजिबल है। दूसरी विशेषता है साउंड, आवाज। क्योंकि दुनिया में आवाज है इसीलिए हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने विचारों की लेन देन कर सकते हैं। और तीसरी विशेषता है गति, मोशन। क्योंकि दुनिया में गति है इसीलिए ये दुनिया परिवर्तनशील है। अगर दुनिया में गति नहीं होती तो परिवर्तन भी नहीं होता। परंतु हम अनुभव करते हैं कि हमारी सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है क्योंकि यहां गति है। तो ये तीन विशेषताएं हमने आपको बताई, कौन सी? लाइट, साउंड एंड मोशन। इन्हीं तीन विशेषताओं के कारण ही आजकल दुनिया में वीडियो, मोबाइल से वीडियो खींचने का प्रचलन है और देखना का भी प्रचलन है। लोगों को वीडियो खींचना भी अच्छा लगता है और देखना भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें यही तीन चीज है, लाइट, साउंड एंड मोशन। एक भी चीज अगर उस वीडियो में मिस हो जाएगा तो आप बोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि साकार मनुष्य लोक की यही तीन विशेषताएं हैं, इसलिए वो रियल लगता है। तो अब हमने आपको तीन घटनाएं भी सुना दी और तीन विशेषताएं भी सुना दी। तो अब ये भी जानना जरूरी होगा कि कौन सी विशेषता के कारण कौन सी घटना घट रही है। तो हम आपको बताएं कि सूर्य के प्रकाश और गर्मी के कारण ही इस सृष्टि पर भौगोलिक घटनाओं का निर्माण होता है। भूगोल बनता है सूर्य की हीट एंड लाइट से। उदाहरण के लिए, चूंकि सूर्य का प्रकाश है इसीलिए ही तो दिन और रात हो रहे हैं ना, ये भौगोलिक घटना है। चूंकि सूर्य की गर्मी है इसलिए मौसम बदल रहे हैं, ये भी भौगोलिक घटना है। तो भौगोलिक घटनाओं के घटने का मूल कारण क्या हो गया? सूर्य की हीट एंड लाइट। दूसरी बात है आवाज, साउंड। आवाज के कारण इस सृष्टि पर ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण होता है। क्योंकि हम मनुष्यों के शब्दों से इतिहास की रचना होती है। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि महाभारत कैसे बना, तो कहते हैं द्रौपदी के वो दो शब्द ही तो थे। रामायण कैसे बना, कहते हैं मंथरा के वो दो शब्द ही तो थे। चलिए उसको एक तरफ रख दीजिए, परंतु वर्तमान समय कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना अभी घट रही है कि जिस परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है वो यहां पर इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आकर के वो निराकार परमात्मा हमारे सामने बोल रहा है। है ना, लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है। लोग देखिए, लोग ना परमात्मा, भगवान, ईश्वर कहते हैं, तो ये तीन शब्द कहने से ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत दूर है ना। परंतु यहां पर हम परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, वो मेरा पिता है, मेरा पिता है, है ना। देखिए एक चीज मैं बीच में बताना चाहूंगा कि भारत देश को एक जगह इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर एक सेमिनार था, उसमें मुझे बोलने का मौका मिला, तो उसमें मैंने यही सुनाया कि भारत देश को परमात्मा से चार वरदान मिले हैं। भारत देश को परमात्मा से चार वरदान मिले जो किसी भी देश को नहीं मिले। वो चार वरदान कौन से हैं? पहला वरदान परमात्मा से भारत देश को यह मिला है कि ये भारत देश लाइट हाउस है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश पुंज है, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश भारत से ही विश्व में चार ओर फैलता है। तो ये भारत पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक गुरु है, विश्व गुरु है। विश्व गुरु भारत आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से जब बनेगा सो बनेगा, परंतु अभी वर्तमान समय ये आध्यात्मिक ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में भारत से ही फैलता है। तो ये पहला वरदान है, ये हमारा भारत देश पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक गुरु है, लाइट हाउस है। दूसरा वरदान है, ये भारत देश परमात्मा की अवतरण भूमि है। भगवान केवल भारत में ही आता है, दूसरे देशों में नहीं आता है। तो किसी ने मुझे क्रॉस क्वेश्चन किया, मुझे प्रश्न पूछा कि भगवान तो भारत में ही आता है, ये तो पक्षपात है, भगवान दूसरे देश में क्यों नहीं आना चाहिए, भारत में क्यों आना चाहिए, भगवान भारत में क्यों आता है, वो लंदन अमेरिका में क्यों नहीं आता, इसका क्या उत्तर है? इसका उत्तर ये है कि देखिए, आप कोई बहुत बड़े बड़े वीवीआईपीस को आप किसी प्रोग्राम में बुलाएंगे, अपने पास बुलाएंगे, तो अपने आप थोड़ी आएगा, आपको निमंत्रण देना पड़ेगा ना। भगवान इतनी बड़ी ऊंची हस्ती, भारत देश के निवासी परमात्मा को निमंत्रण देते हैं, उनको बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से हमारा रिलेशन है ना। हम उनको कहते हैं परम पिता परमात्मा, हमारे लिए पहले वो पिता है, परमात्मा बाद में है। पूरी दुनिया के लिए परमात्मा होगा तो होगा, परंतु हमारे लिए वो पिता है, फादर है। तो पिता का संबंध कितना क्लोज है ना। तो हम भारतवासियों का परमात्मा से प्यार है, क्योंकि संबंध है, और प्यार है इसलिए बुलाते। भले भक्ति मार्ग में परमात्मा का वास्तविक परिचय नहीं भी है, फिर भी लोग बुलाते तो हैं। गीत है ना, भले कृष्ण को भगवान मानते हैं, परंतु कृष्ण को भगवान के रूप में मानते हुए भी कहते हैं ना, कन्हैया कन्हैया तुझको आना पड़ेगा, गीता वाला वादा निभाना पड़ेगा। तो अधिकार से बुलाते हैं ना, तो जहां निमंत्रण है वहीं भगवान आएंगे ना। भारत देश में परमात्मा को निमंत्रण दिया जाता है, और वो हमारा पिता है, तो पिता कहां आएगा, अपने बच्चों के पास ही तो आएगा ना। दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में परमात्मा को कभी भी निमंत्रण नहीं देते, कभी वो भगवान को बुलाते नहीं है। दूसरे धर्मों में, दूसरे देशों में उनकी मान्यता क्या है, वो कहते हैं गॉड फादर, उनके लिए फादर बाद में, पहले गॉड है, और हमारे लिए परम पिता, हमारे लिए पहले पिता है, परमात्मा बाद में है ना। तो अब इसीलिए दूसरे धर्म वालों ने वो कहते हैं गॉड फादर है ना। अब परमात्मा को क्यों नहीं बुलाते, इसका एक मुख्य कारण है, क्योंकि दूसरे धर्म वाले पुनर्जन्म को नहीं मानते, दूसरे धर्म वाले पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है। उनका कहना है कि यही एक जन्म, आप पहला और आखिरी यही जन्म है, खाओ पियो कुछ भी कर लो इसी जन्म में कर लो। तो इनडायरेक्टली दूसरे धर्म वाले उनके अनुयायियों को ये छुट्टी देते हैं कि तुमको कुछ भी करना कर लो, पाप कर लो कुछ भी कर लो, क्योंकि एक ही जन्म है। इसीलिए उनको डर लगता, और उनको ये भी डर लगता है कि वो मानते हैं कि परमात्मा सृष्टि पर आएंगे, परंतु आएंगे तो क्या करेंगे, सबको कब्र से जगाएंगे और सजा देंगे, पनिशमेंट देंगे। तो जिनसे सजा मिलना है उनसे प्यार होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए वे लोग परमात्मा को नहीं बुलाते, क्योंकि डर है वो आएगा तो हमको तो डंडा मारेगा, सजा देगा। इसीलिए दूसरे देशों में, दूसरे धर्मों में परमात्मा को कभी भी निमंत्रण नहीं देते, ये मुख्य कारण है। और यहां भारत देश में पुनर्जन्म की मान्यता है, अगर हम इस जन्म में कोई गलत कर्म किया तो अगले किसी जन्म में हमको इसकी सजा मिलेगी, ये डर तो होता है ना। तो इसीलिए हम श्रेष्ठ कर्म करें, अच्छा कर्म करें, ये हमको हमारे अंदर आता है। खैर, ये तो मैं आपको चार वरदान की बात बता रहा था, कि दूसरा वरदान क्या बताया, कि भारत देश परमात्मा की अवतरण भूमि है। तीसरा वरदान ये है कि ये भारत देश अविनाशी खंड है, इसका कभी भी विनाश नहीं होता है। इसमें मैं आगे चल के बताऊंगा वो कैसे नहीं होता है, कैसे भारत बच जाता है, उसका बहुत वंडरफुल यूनिक कारण है, वो मैं अभी सुनाऊंगा। तो तीसरा वरदान ये, भारत देश अविनाशी खंड है, पूरी दुनिया का विनाश हो जाएगा परंतु भारत देश का कभी भी विनाश नहीं होता है। हाँ, परिवर्तन होता है, और बहुत अच्छा श्रेष्ठ परिवर्तन होता है। और चौथा वरदान है, ये भारत भूमि ही स्वर्ग बनता है। स्वर्ग जिसका गायन अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति से है ना, कोई बहिष्ट कहता है, कोई जन्नत कहता है, कोई पैराडाइज कहता है। वो दूसरे धर्म वाले वो स्वर्ग में जाते नहीं है, केवल स्वर्ग का गायन है, परंतु स्वर्ग में, वो सत्य की दुनिया में हम भारतवासियों को ये भाग्य मिला है, और अभी मिला है। कैसे मिला है, परमात्मा के इस ज्ञान को जो अच्छी तरह से सुनेंगे, समझेंगे और धारण करेंगे, वही आने वाली सत्युगी पवित्र दुनिया जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, वहां आने के अधिकारी बनेंगे। तो ये चार वरदान केवल और केवल भारत देश को ही मिला हुआ है। कौन कौन सा वरदान बताया, पहला क्या बताया, ये भारत देश आध्यात्मिक गुरु है, लाइट हाउस है। दूसरा वरदान, ये भगवान परमात्मा की अवतरण भूमि है। तीसरा वरदान, हाँ, ये अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता है। और चौथा वरदान, भारत ही स्वर्ग बनता है। तो आप सोचिए, हम भारतवासियों को कितना गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश में पैदा हुए हैं, है ना। अब मैं, ये तो मैंने बीच में सुना दिया, मुझे वो बात याद आ गई। अब मैं आपको यहां बताना चाहता हूं, मैं आपको बता रहा था कि कौन सी विशेषता के कारण कौन सी घटना घट रही है ना। तो पहला क्या बताया, कि सूर्य की हीट एंड लाइट के कारण इस सृष्टि पर भौगोलिक घटनाएं होती है, भौगोलिक घटनाओं का निर्माण होता है। वो मैंने आपको बताया कि लाइट है इसीलिए दिन रात हो रहे हैं, गर्मी है इसलिए मौसम बदल रहे हैं, ये सभी भौगोलिक घटनाएं। दूसरी बात है आवाज, आवाज के कारण इस सृष्टि पर ऐतिहासिक घटनाओं का निर्माण होता है, क्योंकि हम मनुष्यों के शब्दों से इतिहास की रचना होती है। उदाहरण के लिए मैंने बताया कि महाभारत कैसे बना, तो कहते हैं द्रौपदी के शब्द थे। अभी वर्तमान समय कितनी बड़ी ऐतिहासिक घटना अभी घट रही है कि जिस निराकार परमात्मा को सारी दुनिया ढूंढ रही है वो यहां आकर के हम बच्चों के सामने बोल रहा है। हमारे यहां रोज सवेरे एक मुरली क्लास होती है, जैसे अभी यहां हो रही है ना, ऊपर बड़ा हॉल है वहां पर अभी मुरली क्लास चल रही है। ये मुरली क्या है? मुरली वो निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा के शब्द है, महावाक्य है, जो स्वयं साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में परकाय प्रवेश करके उनके मुख कमल द्वारा उच्चारण करते हैं, उसको हम ज्ञान मुरली कहते हैं। और उसी ज्ञान मुरली को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो उसी से ही सत्युग स्वर्ग का निर्माण हो जाता है। तो आप बताइए इससे बड़ी ऐतिहासिक घटना और क्या हो सकती है? शब्दों से इतिहास बनता है। और तीसरी बात है गति, गति के कारण इस सृष्टि पर खगोलीय घटनाओं का निर्माण होता है। खगोलीय घटना का मतलब होता है अंतरिक्ष में, आकाश में ग्रह नक्षत्रों की गतिविधि, जिसके आधार पर ही ज्योतिष विद्या का निर्माण हुआ है। ज्योतिष विद्या क्या है? ग्रह नक्षत्रों की गति और उसका प्रभाव। तो ये मॉडल खास करके गति के ऊपर केंद्रित है। यहां पर तीन प्रकार की गति दिखाई गई है। तीन प्रकार की गति आत्माओं की भी होती है और तीन प्रकार की गति पृथ्वी की भी होती है। आत्माओं के तीन गति को यहां चित्र में दिखाया गया है और पृथ्वी की तीन गति को इस मॉडल में। पहले हम आत्माओं की तीन गति के बारे में आपको बताएंगे। देखिए हमारी ये जो ये स्वस्तिका का चिन्ह है, इस स्वस्तिका के चिन्ह का ये जो दायां भाग है, यहां पर सत्युग लिखा है और नीचे त्रेतायुग लिखा है, सत्युग और त्रेतायुग है ना, सत्युग त्रेता, गोल्डन एज सिल्वर एज। तो इस भाग को सेंटर पॉइंट से इस भाग को राइट हैंड साइड, इस भाग को सृष्टि चक्र का पॉजिटिव साइकिल कहा जाता है, टाइम साइकिल, समय के चक्र का ये पॉजिटिव साइकिल है। यहां पर कोई नेगेटिव बातें होती ही नहीं है और इसी पॉजिटिव साइकिल को ही आध्यात्मिक भाषा में स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग। और इसी समय के दौर, क्योंकि ये सुख की दुनिया है, यहां पर कोई दुख की बातें होती ही नहीं है। भले भक्ति मार्ग में दिखाया गया है कि सत्युग में कृष्ण के समय भी कंस था और त्रेतायुग में राम के समय भी रावण था, परंतु ऐसा था ही नहीं। ये तो आगे वो लिख दी गई है, क्योंकि ये सब ऋषि मुनियों ने जो ये वेद शास्त्र रचे हैं वो तो मनुष्य ही थे ना, परंतु स्वयं परमात्मा जो निराकार ज्योतिर्बिंदु जो कि सत्यम शिवम सुंदरम है, तो स्वयं ये ज्ञान सुनाते हैं। तो ये भाग राइट हैंड साइड जो है ये पॉजिटिव साइकिल है और यहां पर हम आत्माओं की सदगति होती है। सदगति, सदगति का मतलब होता है सतो प्रधान स्थिति, आत्माओं की सबसे ऊंची स्थिति। तो ये राइट साइड हो गया सदगति और स्वस्तिका के चिन्ह का जो लेफ्ट हैंड साइड है ये द्वापर युग और कलयुग, ये भाग समय के चक्र का ये नेगेटिव साइकिल है। ये सेंटर पॉइंट से राइट हैंड साइड पॉजिटिव साइकिल और लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव साइकिल। और इसी नेगेटिव साइकिल को ही नरक कहा जाता है। और यहां पर आत्माओं की दुर्गति होती है। दुर्गति का अर्थ होता है आत्माओं की रजो और तमो प्रधान स्थिति। अब चूंकि ये सृष्टि चक्र है, इसीलिए हमेशा कलयुग ही चलाएगा ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा सतयुग ही चलाएगा ऐसा भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सृष्टि परिवर्तनशील है। परंतु कलयुग बिल्कुल पतित दुनिया, सतयुग बिल्कुल पवित्र पावन दुनिया, तो इतना बड़ा विशाल सकारात्मक परिवर्तन अपने आप तो नहीं होगा। तो इतना बड़ा विशाल सकारात्मक परिवर्तन का कार्य करने के लिए स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा को सृष्टि पर अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि उनके बिना ये कार्य कोई नहीं कर सकता, वही एक सर्वशक्तिवान है। परंतु ये कार्य करने के लिए वो कब आते हैं? न कलयुग के अंत और सतयुग का आदिकाल, दोनों युग के बीच में ये छोटा सा समय दिखाया गया है, जिसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जो अभी चल रहा है, अभी वही समय चल रहा है। इस समय स्वयं निराकार परमात्मा सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं और ये दिव्य परिवर्तन करने का कर्तव्य कर रहे हैं। अब संगम युग पर स्वयं निराकार परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के हम आत्माओं को कलयुग के दुखों से और दुर्गति से छुड़ा करके गति प्रदान करते हैं, जिसको मुक्ति भी कहा जाता है ना? तो मुक्ति, जिसको गति को मुक्ति भी कहा जाता है, तो गति, सदगति और दुर्गति, ये तीन प्रकार की गति आत्माओं की होती है। और आत्माओं की ये तीनों गति निर्भर करता है हमारे ही कर्मों की गहन गति के ऊपर। तो कर्म एवं कर्म का फल, इसका सीधा संबंध हमारे कर्म भूमि पृथ्वी से लगता है, क्योंकि यहीं पर ही पृथ्वी पर ही हम आत्माएं जन्म मरण का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी की भी तीन प्रकार की गति होती है। पृथ्वी की पहली गति यह है कि पृथ्वी अपने ही धुरी पर घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा होता है, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति यह है कि पृथ्वी एक ही जगह खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है, घूमते हुए आगे भी बढ़ रही है, और सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में एक बार कर लेती है, जिसको वर्ष का चक्कर या ऋतु चक्कर कहा जाता है। अब ये दोनों गति तो हम मनुष्यों को मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि ये दोनों गति हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के भीतर आता है, हम इसको अनुभव कर सकते हैं। परंतु इन दोनों गति के अलावा पृथ्वी की एक तीसरी गति भी होती है, जो मनुष्यों को नहीं मालूम, जो वैज्ञानिकों को भी नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि वो तीसरी गति बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही गुह्य है, और हम मनुष्यों के लिमिटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस के बाहर है। इसीलिए उस तीसरी गति का ज्ञान सिवाय निराकार शिव परमात्मा के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस चक्र से ही बाहर है, ऊपर है, जो ऊपर से इस तीसरी गति को देख रहा है और हमें बता रहा है। अब परमात्मा ने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में हमें बताया है, उसको समझने के लिए सबसे पहले तो यह जानना जरूरी होगा कि जब 365 दिन में पृथ्वी ने सूर्य का एक साल का चक्कर पूरा कर लिया, तो उस एक साल के चक्र को सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। जो एक वर्ष का चक्कर है 365 दिन का, वो एक वर्ष का चक्कर जो है सूर्य का केवल एक अंश का चक्कर है, संपूर्ण चक्कर नहीं है। क्यों? क्योंकि सूरज पृथ्वी से लगभग लगभग 109 से 110 गुना बड़ा है, बहुत विशाल है। जो कि यहां दिखाना संभव नहीं है। तो इतने बड़े विशाल सूर्य के सामने हमारी पृथ्वी एक छोटा सा कंकर के जैसा है। उदाहरण के लिए अगर हम एक बड़ा बॉल ले लेते हैं तो ये आपके सामने एक बॉल है। अब ये काला बॉल है, अगर इस बॉल के ऊपर एक चौक पीस लेकर के इस बॉल के बीचों बीच इसके सेंटर लाइन को मेंटेन करते हुए अगर हमने चौक से एक लकीर खींच दिया तो इस बॉल के बीचों बीच एक परिधि की लकीर खींच जाएगी, वन लाइन ऑफ सर्कमफेरेंस। तो एक परिधि की लकीर खींच जाने से पूरा का पूरा काला बॉल चौक से सफेद थोड़ी हो जाएगा भाई, जितनी मोटी चौक है केवल उतनी मोटी लकीर खींच जाएगी बस। ठीक इसी प्रकार से हमारा सूर्य भी एक बहुत बड़ा बॉल है, गैस का बॉल है, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसों का निरंतर विस्फोटन हो रहा है और हमारी पृथ्वी उसी छोटी चौक पीस के समान ही है। तो एक साल के दौरान हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के बीचों बीच केवल एक परिधि का ही चक्कर लगा पा रही एक साल में। तो एक साल में छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरे 360 डिग्री का स्फेरिकल सरफेस एरिया एक साल में कवर नहीं कर पा रही है। इसीलिए उस एक वर्ष के चक्र को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक अंश का चक्र कहा गया है, न कि संपूर्ण चक्र। अब वो संपूर्ण चक्र कैसे होगा? होना जरूर है क्योंकि गति सृष्टि का नियम है। तो वो संपूर्ण चक्र पूरा होने के लिए ये जो ऑर्बिट आपको दिखाई दे रही है, ये ऑर्बिट, ऑर्बिट माना सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी के घूमने का रास्ता, ये ऑर्बिट। ये ऑर्बिट भी धीरे धीरे खिसकता है, ये भी घूमता है। आप देख रहे हैं पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूम रही है, घूमती भी सूर्य का चक्कर भी लगा रही है और साथ साथ ही ऑर्बिट भी शिफ्ट हो रहा है, ये भी घूम रहा है। यही पृथ्वी की तीसरी गति है, यही पृथ्वी की तीसरी गति है। अब इस ऑर्बिट को अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें गोल दिखाई देगा और इधर से गोल दिखने वाली ऑर्बिट को अगर आप सामने से देखने लगेंगे तो यही गोल ऑर्बिट सामने से आपको यह लकीर नजर आएगी। उदाहरण के लिए जब हम भोजन करते हैं तो हमारी थाली गोल दिखाई देती है। भोजन करने के बाद थाली को धो करके जब आपने रैक में खड़ा रख दिया तो बाजू से गोल दिखने वाली थाली सामने से तो एक लकीर दिखेगी ना। तो ठीक इसी प्रकार से इस स्वस्तिका के चिन्ह के बीचों बीच जो दो बड़ी लकीरें खींची गई है, इस स्वस्तिका के चिन्ह में दो बड़ी लकीरें खींची गई है, एक ये खड़ी लकीर दूसरी ये आड़ी लकीर। तो इस चिन्ह में दो बड़ी लकीरें बीच में क्यों दी गई, इसका मतलब क्या है? ये दोनों बड़ी लकीरें वास्तव में इसी गोल ऑर्बिट के, ये जो लकीर दिखाई गई पीछे गए, इसी लकीर का ही ये प्रतीक है जो सामने से दिखाई दे रही है। अब चूंकि गति सृष्टि का नियम है इसलिए ये लकीर कहीं भी रुकेगी नहीं, है ना? अब देख रहे हैं ये लकीर अभी आड़ी थी, अब घूमते घूमते खड़ी भी हो जाएगी, परंतु इस आड़ी लकीर को खड़ी हो जाने के लिए 1250 साल लग जाते। इसका मतलब ये हुआ हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का केवल एक चौथाई चक्कर पूरा करने, सूर्य का 90 डिग्री अंश का चक्कर पूरा करने में ही हमारी पृथ्वी को 1250 वर्ष लग जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी छोटी सी पृथ्वी को इतने बड़े विशाल सूर्य का पूरे 360 डिग्री का स्फेरिकल सरफेस एरिया का केवल एक बार संपूर्ण चक्कर पूरा करने में हमारी पृथ्वी को 5000 साल लग जाते हैं। तो 5000 साल में हमारी छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य के चारों तरफ केवल एक ही बार संपूर्ण चक्कर लगा पाती है और यही सबसे बड़े से बड़ा चक्कर है, इससे बड़ा कोई चक्कर नहीं होता, और इसी को कहा जाता है कल्प का चक्कर। ये काल्पनिक नहीं है। जैसे ये 24 घंटे का दिन रात का चक्कर ये वास्तविक है, 365 दिन का चक्र ये भी वास्तविक है, इसी प्रकार से ये ऑर्बिट भी खिसकते 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 5000 साल में सूर्य का संपूर्ण चक्कर पूरा कर लेती है। वंस इन ए 5000 ईयर, 5000 साल में एक ही चक्कर पूरा होता है ना, इसी को कहते हैं कल्प पूरा हुआ। यही है तीसरी गति। अब देखिए, इसी को कहा जाता है समय का चक्र, समय का चक्र। अब मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि देखिए, समय जो है ना, समय टाइम, ये टाइम साइकिल, समय वास्तव में 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार का समय होता है। पहला प्रकार का समय है, उसको कहते हैं नेचर क्लॉक। ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी, इसको कहते हैं नेचर क्लॉक, अर्थात अपने समय पर दिन होगा, अपने समय पर रात होगा, ये अपने हिसाब से चलेगा, है ना, इसको कहते हैं नेचर क्लॉक। हिंदी में कहते हैं समयचर्या, समयचर्या। दूसरे प्रकार का समय होता है, उसको कहते हैं ये जो है, ये हमारा बायो क्लॉक, उसको कहते हैं बायो क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक। उसको हिंदी में कहते हैं दिनचर्या, नहीं ये उसको कहते हैं दिनचर्या, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपने अपने शरीर का अपना अपना डिमांड है, किस समय किसको भूख लग रही है, किसको किस समय किसको नींद लग रही है ना, तो ये बॉडी का डिमांड के अनुसार हम उसकी पूर्ति करते हैं, तो इसको कहते हैं ये हमारा ये शरीर चर्या है। पहले प्रकार का समय क्या बोला, ये है नेचर क्लॉक। दूसरा है, ये है बायो क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक, इसको हिंदी में कहते हैं शरीर चर्या। तीसरे प्रकार का समय होता है, उसको कहते हैं रूटीन क्लॉक, रूटीन क्लॉक। मतलब हर एक व्यक्ति का अपना अपना कार्य समय अलग अलग है, किसी को 8 बजे ऑफिस जाना है, किसी को 10 बजे जाना है, किसी को 11 बजे दुकान खोलनी है ना, तो हर एक की दिनचर्या अलग अलग है अपने अपने कार्य के धंधे के अनुसार। तो ये तीसरे प्रकार का समय जो होता है, उसको कहते हैं रूटीन क्लॉक, इसी को कहते हैं दिनचर्या। चौथे प्रकार का समय होता है, उसको कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक, एस्ट्रोलॉजिकल, हिंदी में कहते हैं आयुष्चर्या, आयुष्चर्या। वो क्या है, वो ये है कि देखिए, हर एक आत्मा का जो हमारा शरीर में जन्म हुआ है, जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अवश्य होगी, होगी ना, ये तो सर्टन है, परंतु कब होगी हमें पता नहीं है, है ना, इसीलिए हम बर्थडे मनाते हैं, जीते जी डेथ डे नहीं मनाते, क्योंकि पता ही नहीं कब मरेंगे, है ना, और मरने के बाद दूसरे लोग मनाएंगे। तो और वैसे भी किस व्यक्ति का किस समय जन्म हुआ, उस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या थी, उसकी राशि क्या है, उसकी कुंडली क्या है, हर एक का अलग अलग है। तो कहते हैं ना, किसी का राहु की दशा चल रही है, किसी का बृहस्पति की दशा चल रही है, तो हर एक की कुंडली के जन्म के उसके हिसाब, पांचांग के उसके हिसाब से होता है। तो ये इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजिकल क्लॉक, आयुष्चर्या या भाग्यचर्या। अब पांचवें प्रकार का जो समय होता है, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, वो ये है, ये बेहद की घड़ी है, जिसको दूसरे शब्द में कहते हैं बेहद की घड़ी, बेहद का समय, समय। अब हद की घड़ी में 3 कांटे होते हैं, 3 कांटे होते हैं ना, 1 सेकंड का कांटा, 1 मिनट का कांटा और एक घंटे का काटा, तो ये बेहद की घड़ी है। और ये बेहद की घड़ी में भी तीन कांटे होते हैं, वो तीन कांटे, ये तीन गति ही तीन कांटे होते हैं। पृथ्वी की जो तीन गति बताई ना, यही बेहद की घड़ी के तीन कांटे हैं। तो पहली गति क्या बताई, पृथ्वी की पहली गति, पृथ्वी अपने धुरी पर ही घूम रही है, ये दिन रात की गति, ये पहला कांटा। दूसरा कांटा क्या बताया कि पृथ्वी अपने धुरी पर घूमते घूमते सूर्य का चक्कर भी लगा रही है ना, तो वो है दूसरा कांटा। तो पहला पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम, वो समझ लीजिए सेकंड का कांटा। सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, ये समझ लीजिए मिनट का कांटा। और साथ साथ ये ऑर्बिट भी खिसक रही है, ये है तीसरा कांटा। तो घड़ी में तीसरा कांटा हो ही नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये ही पृथ्वी की तीसरी गति है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब हमने आपको बताया कि अभी ये जो हमारी ये जो स्वस्तिका का चिन्ह बताया, अभी ऑर्बिट को हमने ऊपर से देखा तो गोल दिखा, सामने से दिखा तो सीधी लकीर दिखी। तो स्वस्तिका के बीच में जो दो बड़ी चिन्ह है वो इसी गोल ऑर्बिट के इसी लकीर का रिप्रेजेंटेशन है जो सामने से दिखाई दे रही है। अब चूंकि गति सृष्टि का नियम है इसलिए ये लकीर कहीं भी रुकेगी नहीं। आप देख लें, देख रहे हैं ये लकीर अभी आड़ी हो रही है, घूमते घूमते खड़ी भी हो जाएगी। तो मैंने बताया कि 1250 साल में ये जो 90 डिग्री सूर्य का कवर कर लेती है, तो 5000 साल में पूरा सूर्य का पूरा संपूर्ण चक्र हमारी पृथ्वी लगा लेती है। अब देखिए हमारे पृथ्वी की तीसरी गति का जो आधार है, रेफरेंस पॉइंट है, वो देखिए वो यहां पर ये है। तो इस स्वस्तिका के चिन्ह में बीच की दो बड़ी लकीरों के अलावा यहां पर चार छोटी लकीरें भी खींची गई है। स्वस्तिका में पहले बीच की दो बड़ी लकीर, फिर ये चार छोटी लकीर। ये चार छोटी लकीरें क्यों दी गई, इसका मतलब क्या है? तो ये चार छोटी लकीरें वास्तव में हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है एट ए पर्टिकुलर सिचुएशन। देखिए हमारे पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। देखिए हमारे जब कभी आपने ग्लोब के मॉडल को देखा है, आपने हमेशा यही देखा है कि नॉर्थ पोल को हमेशा ऊपर के तरफ ही रखा जाता है, साउथ पोल को नीचे के तरफ। ऐसा तो कहीं भी नहीं देखा होगा कि साउथ ऊपर नॉर्थ नीचे, हमेशा नॉर्थ पोल को ही ऊपर के तरफ रखा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है और इस चुंबक का नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज है, साउथ पोल इस चुंबक का नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी का सिर माना गया है, इसलिए सिर को ऊपर रखा जाता है। दूसरी बात, हमारे प्राइमरी स्कूलों में भी भूगोल पढ़ाए जाते हैं, उसमें एक किताब होती एटलस, अगर आपने देखा होगा उस किताब में इतना स्पष्ट दिखाया गया है कि पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है, एंटी क्लॉकवाइज। और यही कारण होता है कि सूरज पूर्व दिशा के तरफ से उदय होता हुआ दिखाई देता है। अगर ये घड़ी की दिशा में घूमने लगेगा तो सूरज पश्चिम से उदय होता हुआ दिखाई देगा, पर ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि पृथ्वी हमेशा अपनी धुरी पर घड़ी की उल्टी दिशा में ही घुमा करती है। परंतु कब? जब नॉर्थ पोल के तरफ से देखेंगे तब। नॉर्थ पोल के तरफ से देखने से ही ये घड़ी की उल्टी दिशा दिखेगी। और इसी गति को अगर आप साउथ पोल से देखने लगेंगे तो ये घड़ी की दिशा दिखेगी। साउथ पोल से यही गति घड़ी की दिशा दिखेगी और नॉर्थ पोल से यही गति घड़ी की उल्टी दिशा दिखेगी, है ना? तो हम क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन चेंज हो गया, तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी की पहली गति हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है और पृथ्वी की दूसरी गति भी हमेशा घड़ी की उल्टी दिशा में घुमा करती है। और ये दोनों गति एटलस के किताब में दिखाए गए हैं। परंतु हमने जो पृथ्वी की तीसरी गति के बारे में बताया वो तीसरी गति हमेशा घड़ी की दिशा में हुआ करती है। पृथ्वी की पहली गति एंटी क्लॉकवाइज, पृथ्वी अपने धुरी पे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, सूर्य के चारों तरफ घूम रही है ये भी एंटी क्लॉकवाइज, परंतु जो तीसरी गति हो रही है वो हमेशा क्लॉकवाइज होती है। जो मैंने बताया ना आगे लकीर दिख रही है, पहली गति एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी गति भी एंटी क्लॉकवाइज, पर ये तीसरी गति हमेशा क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज ये। और इसका एकमात्र प्रमाण ये स्वस्तिका का चिन्ह ही है। अगर पृथ्वी की तीसरी गति नहीं होती तो यहां बीच में दो बड़ी लकीरें दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, एक ही लकीर दिखाना काफी था। परंतु चूंकि पृथ्वी की तीसरी गति होती है इसलिए ये लकीर कभी खड़ी हो जाती है तो कभी आड़ी हो जाती है। तो स्वस्तिका के बीच की दो बड़ी लकीरें ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी की तीसरी गति होती है, और चारों छोटी लकीरें ये सिद्ध करता है कि वो तीसरी गति घड़ी की दिशा में होती है। यही कारण है कि इन चारों लकीरों को घड़ी की दिशा में ही दिखाई गई है, चारों छोटी लकीरों को घड़ी की दिशा में दिखाई गई है ना। तो जो ये जो स्वस्तिका का चिन्ह है वास्तव में ये पृथ्वी की तीसरी गति का ही सिंबल है। जैसे देखिए कोई भी सिंबल होता है ना उसका एक मीनिंग होता है। आप बाजार में जाएंगे तो कहीं दो रेड प्लस दिख गया, रेड प्लस दिख गया तो आपको समझ में आ जाएगा या तो डॉक्टर का मतलब क्लिनिक है, हॉस्पिटल है, या फिर दवाई की दुकान है, ये सिंबल है ना। परंतु उसी रेड प्लस में अगर चार छोटी लकीरें जोड़ दिया जाए तो वो क्या हो गया, स्वस्तिका का चिन्ह हो गया। तो ये स्वस्तिका का चिन्ह वास्तव में पृथ्वी की तीसरी गति का ही सम सिंबल है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब देखिए यहां पर दूर से आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमारा इसका बड़ा मॉडल भी है ट्रेनिंग सेंटर हॉल नंबर 11 में, कभी मौका मिलेगा तो आप आइएगा। तो यहां पर हमने इधर हमारे पृथ्वी की तीसरी गति का जो आधार है वो हमारा नॉर्थ पोल ही है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर 6 महीने में हमारे पृथ्वी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच जाती है, जिसके कारण उत्तरायण और दक्षिणायन बनता है। पूरे साल में दो तारीख बड़ा महत्वपूर्ण है, एक 21 जून दूसरा 21 दिसंबर। 21 जून को पृथ्वी घूमते घूमते इस एंड में आ जाती है और उसका उत्तरायण पूरा हो जाता है, दूसरे दिन से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। 6 महीने के बाद 21 दिसंबर को पृथ्वी दूसरे एंड में आ जाती है और उसका पूरा ये दक्षिणायन पूरा होकर के फिर से उत्तरायण शुरू हो जाता है। परंतु हमने इधर ना इस एंड में नॉर्थ पोल एरो मार्क दिखाया, उधर का नहीं दिखाया, क्योंकि इधर का नॉर्थ पोल आगे बढ़ रहा है। इसको कहते हैं लीडिंग नॉर्थ पोल, उसको कहते हैं लैगिंग नॉर्थ पोल। तो लीडिंग नॉर्थ पोल को ही पृथ्वी के तीसरी गति का आधार माना गया है। इसका मतलब आपको यहीं से देखना होगा, साल यहीं से शुरू हुआ और यहीं पूरा हुआ। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब घूमते घूमते नीचे की तरफ प्रवेश कर गया तो ठीक यहीं से त्रेता युग शुरू। 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से द्वापर युग शुरू, और अगले 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब ऊपर की तरफ प्रवेश करेगा तो ठीक यहीं से कलयुग शुरू, और अगले 1250 साल बाद यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है तो ठीक यहीं से सतयुग शुरू। परंतु जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करता है उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता है। वो क्या चमत्कार होता है तो देखिए हम आपको बताएंगे। हमने आपने ये तो समझा कि संगम युग पर स्वयं निराकार शिव परमात्मा सृष्टि पर अवतरित होकर के इस पतित कलयुग दुनिया को पावन सत्य की दुनिया में परिवर्तित करते हैं। कैसे करते हैं? परमात्मा सबसे पहले हम आत्माओं को सत्य ज्ञान की समझ देते, ट्रू नॉलेज। आज की दुनिया में ज्ञान की भरमार है, गूगल में जो भी सर्च करेंगे मिल जाएगा, परंतु सत्य ज्ञान तो उसे कहा जाता है जो आत्मा को सत्वप्रधान बनावे। तो यहां पर सिखाए जाने वाला ईश्वरीय ज्ञान ही सत्य ज्ञान है, परंतु केवल ज्ञान को समझना ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ राजयोग का अभ्यास भी जरूरी है, पर क्योंकि उसी से ही आत्मा को परिवर्तन करने की शक्ति मिलती है। तो जब मास स्केल में अनेक आत्माएं इस ईश्वरीय ज्ञान और योग के अभ्यास के द्वारा आत्मा पवित्र बनने लगती हैं, तो उन एक एक आत्माओं की संगठित पवित्रता के वाइब्रेशन के फलस्वरूप इस पृथ्वी का भौतिक परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, और वो भौतिक परिवर्तन तीन विधि के द्वारा होते हैं। एक है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरा होता है गृह युद्ध सिविल वार, और तीसरा एंड फाइनल है परमाणु युद्ध न्यूक्लियर वार। इसका मतलब यह हुआ कि जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा, उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर एक भयानक परमाणु युद्ध अवश्य होगा, क्योंकि बिना परमाणु युद्ध के इतने बड़े विशाल सृष्टि का संपूर्ण परिवर्तन होना संभव नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब नया हो जाएगा ए टू जेड। तो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन के लिए परमाणु युद्ध अति आवश्यक है, और हम सब जानते हैं कि वो शुरू तो हो ही चुका है, कितने देश आपस में लड़ रहे हैं। जब ये थर्ड वर्ल्ड वार का रूप ले लेगा, उस समय हमारे पृथ्वी पर बहुत बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। उनमें से सबसे पहला परिवर्तन तो ये होगा कि जब इतने शक्तिशाली एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब की बौछार एक साथ होगी, क्योंकि एक देश चालू करेगा तो कोई रुकेगा नहीं, थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। ऐसे समय पर इस पृथ्वी पर इतनी जबरदस्त गर्मी उत्पन्न हो जाएगी कि इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सेकंड से भी कम समय में सब कुछ जल के पिघल के राख भूसा पाउडर हो जाएगा, क्योंकि एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा, मैं एक एटॉम बम की बात कर रहा हूं, एक एटॉम बम जहां भी गिरेगा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा करेगा एक एटॉम बम। देखिए, हम सब जानते हैं एटॉम बम का आविष्कार हुआ था 1944 में, और उसका पहला प्रयोग हुआ था 6 अगस्त 1945 जब सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर में डाला था, और दो दिन के बाद 9 अगस्त को नागासाकी में डाला था। वो तो ट्रायल वाले बेबी बॉम्ब थे ना, रिकॉर्ड में बताया गया है कि उस बेबी बॉम्ब के द्वारा उस समय लगभग 4 से 6 हजार सेल्सियस डिग्री के बीच पैदा हुआ था, और अभी तो इतने एडवांस बने हैं कि एक एटॉम बॉम्ब से कम 1 मिलियन 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर एक एटॉम बॉम्ब पैदा करेगा, और इतने बमों के इकट्ठे बौछार से पता नहीं कितने करोड़ डिग्री हो जाएगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पृथ्वी पर ऐसी कोई भी धातु, कोई भी चीज, कोई भी मेटल मौजूद ही नहीं है जो लगभग 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके। तो आप सोचिए इतने करोड़ों डिग्री टेम्परेचर से इस पृथ्वी का क्या हाल होने वाला है, जिसको परमात्मा शिव बाबा अपने शब्दों में कहते हैं कि इस भंभोर को आग लगनी है, लगनी जरूर है। तो मतलब जब ये थर्ड वर्ल्ड वार होगा, परमाणु युद्ध होगा, तब पृथ्वी पर मौजूद सातों के सातों भूखंड की जमीन जल के पिघल कर राख हो जाएगी। जब सारी जमीनें राख हो जाएगी, तो तुरंत हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सारी राख हुई जमीनों को अपने अंदर खींचना शुरू कर देगा। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो अपना काम करेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब ये हुआ सारी राख हुई जमीने पृथ्वी के भूगर्भ के तरफ अंदर दौड़ी खींची चली जाएगी और अंदर जाकर के एक विशाल भूखंड का रूप ले लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर जितने भी देश मौजूद है सब के सब समंदर के अंदर समा जाएंगे। परंतु जो मैं चमत्कार की बात कर रहा था वो चमत्कार ये होगा कि सारे के सारे देश समंदर के अंदर समा जाएंगे, परंतु ये हमारी भारत की भूमि कभी भी समंदर के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? इसके पीछे तीन कारण है। हमारा भारत देश अविनाशी खंड इसलिए क्योंकि इसके पीछे तीन कारण है। इसका पहला कारण यह है कि इस भारत की भूमि पर स्वयं निराकार ज्योतिर्बिंदु शिव परमात्मा का अवतरण होता है, जो कि इन्फिनिटी पॉजिटिव एनर्जी है, सकारात्मक ऊर्जा का अखंड भंडार है, पवित्रता का सागर है। तो परमात्मा के अवतरण से हमारी भारत की भूमि उनके पॉजिटिव एनर्जी के सूक्ष्म वाइब्रेशन से रिचार्ज होना शुरू हो जाता है। कोई भी दूसरा देश अगर भारत के ऊपर एटम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब के द्वारा अटैक करना चाहता है तो उसके नेगेटिव संकल्प को परमात्मा की पॉजिटिव एनर्जी उसको वहीं पर स्टॉप कर देता है। और यही कारण होता है कि उन देशों का जो प्रमुख चीफ होता है उसको कोई ना कोई कारण नजर आता है जिसके कारण वो भारत पर अटैक करने का प्रोग्राम पोस्टपोन करता ही रहता है। फिर भी अगर वो अटैक करना चाहता है तो फाइनल अटैक करने से ठीक पहले या तो कोई तीसरा ही देश उस पर अटैक कर देगा या फिर कोई ऐसी भयंकर प्राकृतिक आपदा जाएगी जिससे उस देश का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। वरना भारत देश में भी अगर किसी ने एटॉम बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ दिया तो भारत की जमीन भी राख होकर के अंदर चली जाए, परंतु वो काम परमात्मा होने ही नहीं देता है। इसीलिए हमारी भारत की भूमि अविनाशी खंड है। और न केवल भारत में बल्कि भारत के अलावा भारत के आस पड़ोस के देशों में भी परमात्मा परमाणु युद्ध नहीं होने देता है, क्योंकि अगर आस पड़ोस के देशों में परमाणु युद्ध हुआ तो भारत में भी बहुत बुरा असर पड़ेगा, कोई जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इसीलिए भारत सहित भारत के आस पड़ोस के देशों में कभी भी परमात्मा परमाणु युद्ध नहीं होने देता है। इसलिए भारत और आस पड़ोस के देशों की जमीन कभी भी राख नहीं होगी, ये सॉलिड ही रहेगा। परंतु जैसे परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा तो तुरंत पांचों तत्वों का विकराल रूप शुरू हो जाएगा, पांचों तत्वों का तांडव शुरू हो जाएगा। और उसी विकराल रूप के कारण भारत देश के जो आस पड़ोस के जो सॉलिड जमीने वो एक एक करके अंदर जाएगी। राख हुई जमीन अंदर गई सो गई, तो पहले एक देश की जमीन सॉलिड जमीन ऊपर गई, उसके ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और आखिरी में भारत देश उस पर टिके। नहीं तो भारत की जमीन भी टिकने का आधार भी नहीं बनता है, सॉलिड होते हुए भी अंदर चली जाए, क्योंकि उस भयंकर विनाश के दौरान अंदर के सारे टेक्टोनिक प्लेट्स खत्म हो जाते हैं, तो टिकने का आधार तो चाहिए। इसीलिए ड्रामा प्लान अनुसार ये बहुत अच्छी युक्ति बनी हुई है कि कैसे भारत देश की रक्षा होती है। अब इसका दूसरा कारण ये है कि सृष्टि पर एक बहुत सुंदर एक यूनिवर्सल लॉ है जो भारत की रक्षा करता है। वो यूनिवर्सल लॉ क्या है? वो यूनिवर्सल लॉ ये है कि सृष्टि पर एवरीथिंग इज साइक्लिक, हर चीज का सर्किट कंप्लीट होता है। इतना तक कि हम जो संकल्प करते हैं उसका भी सर्किट कंप्लीट होता है। मान लीजिए मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, वही नेगेटिव संकल्प जो मैंने दूसरे के लिए किया कुछ समय बाद मेरे पास ही लौट के आएगा और सर्किट कंप्लीट होगा। परंतु जब मेरे पास लौट के आएगा ना, कई गुना मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा और सबसे ज्यादा नुकसान हमारा होगा। इसलिए परमात्मा ने हमको यही शिक्षा दी है कि हमेशा हर आत्मा के प्रति हमको पॉजिटिव संकल्प ही करने हैं, पॉजिटिव संकल्प करने, क्योंकि हमारा पॉजिटिव संकल्प जब हमारे पास मल्टीप्लाई होकर के लौटेगा तो वही हमारे लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। और इसी सिद्धांत के आधार पर कोई देश बार बार भारत के ऊपर अटैक करने का नेगेटिव प्लानिंग कर रहा है तो उसका नेगेटिव संकल्प उसी का विनाश सबसे पहले करता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। हमारे भारत देश में रक्षा मंत्रालय है, आक्रमण मंत्रालय है ही नहीं। भारत देश न तो किसी देश पर कभी अपने आप अटैक किया न कभी करेगा। सत्ता में कोई भी सरकार बैठी हो, परमात्मा की शक्ति ही काम करती है। तो जब भारत देश किसी भी देश का नुकसान अपने आप नहीं करना चाहता है, तो भारत का नुकसान कोई कर ही नहीं सकता है। ये यूनिवर्सल लॉ है। अब इसका तीसरा कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि पृथ्वी के भूगर्भ अंदर केंद्र बिंदु में अभी लावा भरा हुआ है। लावा आग का गोला है। वही लावा कहीं से लीक होकर के निकलता है तो ज्वालामुखी बन के निकलता है। अभी भी कहीं निकल रहा होगा, परंतु उस भयंकर विनाश की परिस्थिति में जब सारी जमीनें अंदर चली जाएगी, तो जमीन सबसे पहला काम ये करेगी, वो लावा की जगह ऑक्यूपाई कर लेगी और लावा को बाहर फेंक देगा। और लावा क्या करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि सारी सातों भूखंड की जमीन अंदर एक विशाल भूखंड बन गई और उसके बाहर बाहर लावा हो जाए, लावा हो जाएगा। अब लावा क्या करेगा, लावा समुद्र के तले में टच हो जाएगा। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि समुद्र के अंदर 90% बड़े बड़े बर्फ के चट्टान और पहाड़ मौजूद है, तो वो लावा की गर्मी अंदर से सारे बर्फ के चट्टानों को पिघाल देगा। और न्यूक्लियर बॉम्ब की गर्मी क्या करेगी, दोनों पोल में जो बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर्स है उसको पिघला देगा। तो अंदर और बाहर बर्फ नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। और एट द सेम टाइम समुद्र तल सी लेवल 100% बढ़ जाएगा, क्योंकि सारे बर्फ पिघल गए अंदर बाहर सारे बर्फ, तो सी लेवल 100% बढ़ जाएगा। तो तीसरा कारण ये है कि समुद्र तल कितना भी क्यों न बढ़ जाए, फिर भी हमारे भारत की भूमि का संपूर्ण विनाश कभी भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार हमारे भारत की भूमि की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि मीन सी लेवल से बहुत ऊंचा है, और इसका प्रमाण आपको हर रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन के बोर्ड के नीचे लिखा रहता है कि फलाना शहर समुद्र तल से कितना मीटर ऊंचा है, और जितना नॉर्थ के तरफ जाएंगे उतनी उसकी मीटर की ऊंचाई बढ़ती हुई दिखाई देगी। हाँ, इतना जरूर होगा कि सी लेवल 100% बढ़ने के कारण भारत के तीनों तरफ जो समुद्र तटवर्ती इलाका है, ये सब के सब डूब जाएंगे, सबके सब डूबेंगे। परंतु फिर भी कुछ तीव्र गति के भूकंप के कारण और कुछ ऊपरी ज्वालामुखी फटने के कारण फिर से नए सिरे से कुछ नई जमीनें इधर एक तरफ उभरेगी, क्योंकि इधर का समंदर गहरा नहीं है ज्यादा, इधर ज्यादा है इधर, तो इधर से समुद्र के नीचे से नई जमीनें उभरेगी और भारत के साथ अटैच हो जाएगा, और ये भारत का नक्शा ही बदल जाएगा। ये जो भारत का नक्शा भी बना हुआ है, ये सतयुग में नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब नया हो जाएगा। तो नई दुनिया, नया भारत, नया नक्शा बनेगा। ये नक्शा सतयुग में नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो भारत का नक्शा बना हुआ है इसमें 100% वास्तु दोष है, और यही कारण है कि जब से यह नक्शा बना और जब तक रहेगा, भारत के ऊपर आपदाएं तकलीफें बढ़ती रहेगी, कम नहीं होने वाली। और उस भयंकर हलचल में जो भारत का नया नक्शा बनेगा वो 100% वास्तु साइंस के अनुकूल हो जाएगा। अब अगला परिवर्तन ये होगा कि जब सारी जमीनें अंदर चली गई, इकट्ठी हो गई, तो उन जमीनों के सेटलमेंट अंदर अंदर इस तरीके से सेट हो जाएगी कि जो पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है इक्वेटर, उसके दोनों तरफ उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ बराबर मात्रा में जमीनों की बंटवारा हो जाएगी। जितनी जमीन उत्तरी गोलार्ध में उतनी जमीन दक्षिणी गोलार्ध में, अंदर की जमीन ऐसा बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि देखिए, हम जो भी संकल्प करते हैं ना, हमारे संकल्पों का वाइब्रेशन प्रकृति के पांचों तत्व तो कैच करती है, रिसीव करती है, और जिस क्वालिटी का संकल्प करते हैं प्रकृति अपने आप को वैसे ही ढाल लेती है। इसको समझने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, अगर आपने जापान के डॉक्टर मत्सारू इमोटो का रिसर्च एक्सपेरिमेंट सुना होगा। उन्होंने पानी के ऊपर अपने संकल्पों के प्रभाव का प्रयोग किया। पहले थोड़ा पानी लिया, पहले उन्होंने नेगेटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया, तो उनको ये रिजल्ट मिला, उस पानी का मॉलिक्यूल क्रिस्टल से विकृत हो गए। उसी पानी को जब दोबारा उन्होंने पॉजिटिव वाइब्रेशन देना शुरू किया तो उनको ये रिजल्ट मिला कि वही विकृत मॉलिक्यूल क्रिस्टल्स एक फूल के समान ऑर्गेनाइज हो गए। तो इस रिसर्च एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया कि हमारे संकल्पों का प्रभाव प्रकृति पर अवश्य पड़ता है। अब हम जो ब्रह्मा कुमार भाई बहने हैं, बीके भाई बहने हैं, हम बहुत थोड़े हैं। 5 पांडव गाए हुए ना, तो हम 5% है। हमारी तुलना में दुनिया में करोड़ों नेगेटिव आत्माएं हैं, तो उन नेगेटिव आत्माओं के, करोड़ों नेगेटिव आत्माओं का नेगेटिव वाइब्रेशन प्रकृति के 5 तत्वों को मिल रहा है, इसलिए प्रकृति अभी तमोप्रधान हो गई। परंतु उस भयंकर विनाश के दौरान वो करोड़ों नेगेटिव आत्माएं अपने घर वापस परमधाम चली जाएगी, जहां से आए वहीं से चली जाएगी, है ना। ये आपको 3 लोग बताए ना, ये परमधाम से आए वापस परमधाम चली जाएगी आत्माएं। तो जब करोड़ों आत्माएं यहां से परमधाम चली जाएगी, सारे नेगेटिव आत्माएं, है ना, तो नेगेटिव आत्मा यहां अभी है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए उस समय नेगेटिव आत्माओं के नेगेटिव वाइब्रेशन प्रकृति के 5 तत्वों को मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि वो सब परमधाम चले गए। परंतु हमारे भारत देश में उस समय कुछ पवित्र आत्माएं जीवित रहेंगी, जिसको हम लोग अपनी भाषा में एडवांस पार्टी कहते हैं। उन एडवांस पार्टी की पवित्र आत्माओं के पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकृति के 5 तत्वों को लगातार मिलेगी, क्योंकि ऑपोज करने वाले नेगेटिव आत्माएं है ही नहीं, और पॉजिटिव माना ही बैलेंस। तो उनके पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए हमारी भूमि तत्व भी इक्वेटर भूमध्य रेखा के दोनों तरफ अपने आप बराबर मात्रा में जमीनों के बंटवारा कर लेगी। जितनी जमीन उत्तरी गोलार्ध में, उतनी जमीन दक्षिणी गोलार्ध में, जब दोनों तरफ बराबर वजन आ जाएगा तो पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होते ही पृथ्वी के एक्सिस अभी जो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, एक ही झटके में 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी बैलेंस हो गई। बैलेंस होने के बाद झुकने का प्रश्न नहीं होता। जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो जाएगी तो तुरंत अगला परिवर्तन यह होगा कि विनाश के बाद सतयुग त्रेतायुग में सूर्य के प्रकाश और गर्मी दोनों पोल पर लगातार एक जैसी पड़ेगी। जितनी लाइट नॉर्थ पोल में उतनी लाइट साउथ पोल में एक ही समय पर पड़ेगी, क्योंकि सीधी खड़ी है। इसीलिए सतयुग त्रेतायुग में साल भर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात, इक्वल डे इक्वल नाइट। ऐसा कभी नहीं होगा कि लंबा दिन छोटे रात, छोटे दिन लंबे रात, वो तब होता जब झुकती है, सीधी खड़ी है तो इक्वल डे इक्वल नाइट। अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी होगी तो तुरंत सूर्य की गर्मी भी दोनों पोल में लगातार एक जैसी पड़ेगी। यही कारण होगा कि सतयुग त्रेतायुग में साल भर दोनों पोल में बर्फ जमा ही नहीं होगा, क्योंकि लगातार गर्मी पड़ रही। हमारे सतयुग के देवी देवताओं को पता ही नहीं होता है कि बर्फ क्या चीज है, इसीलिए देवी देवताएं कभी आइसक्रीम नहीं खाते। अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो गई तो जो सारी जमीनें अंदर चली गई ना, वो जो जमीन है और उस विशाल भूखंड का एक ही सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी बनेगा। इसीलिए हमारी पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो जाएगी। और हम सब जानते हैं कि जो सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है वो पहले से स्थिर है। जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो चुका होगा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी। यही कारण होगा कि सतयुग त्रेतायुग में सूर्य पृथ्वी से साल भर एक ही दूरी मेंटेन करके ये ऑर्बिट आजकल जो चपटी है उसके बजाय गोल हो जाएगी। गोल होते ही सूर्य के प्रकाश और गर्मी पृथ्वी पर साल भर एक जैसी पड़ेगी, है ना, क्योंकि एक ही डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। तो यही कारण होगा कि सतयुग त्रेतायुग में साल भर एक ही मौसम हुआ करेगी। वहां पर सर्दी गर्मी बारिश का अलग अलग मौसम नहीं होता है, सदाबहार वसंत ऋतु सतयुग त्रेतायुग में, क्योंकि सूर्य से एक ही दूरी साल भर मेंटेन किया, ऑर्बिट ही गोल हो गई। अब देखिए साल भर एक ही मौसम, हाँ वहां बारिश रोज होगी पर बारिश का मौसम नहीं होगा। बारिश कब होगी, जब देवी देवता रात को सो जाएंगे तो बारिश शुरू होगी, और वो भी स्प्रे जैसा, वो आजकल के दुखदायी कीचड़ बाढ़ वाली बारिश नहीं होगी। फटेगा ही नहीं, वो तो फटने का प्रश्न ही नहीं उठता है ना। तो स्प्रे स्प्रिंकल जैसा जितना पानी चाहिए उतनी बारिश हो गई, और देवी देवताएं जगने से पहले बंद हो जाएगी क्योंकि प्रकृति दासी है। अब यहीं पर ही बैठे बैठे आप कल्पना कीजिए कि साल भर एक ही मौसम है, साल भर एक ही मौसम है, तो नया साल कब शुरू हुआ, पुराना साल कब गया पता चलेगा? अभी पता क्यों चल रहा है? क्योंकि मौसम बदल रहे हैं। जब मौसम ही नहीं बदलेगा, सदा एक ही वसंत ऋतु होगा, तो नया साल कब आया पुराना कब गया पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए सत्युग त्रेतायुग में यहां पर कैलेंडर नहीं होते, यहां पांचांग नहीं होता, कोई तिथि तारीख लिखता ही नहीं, किसी को संकल्प ही नहीं आ गया ये भी लिखना है, है ना। अब देखिए, अब यहां पर सत्युग त्रेतायुग में संडे मंडे भी नहीं होता है और जनवरी फरवरी भी नहीं होती है। यस, दिन रात होगा और साल होगा, बीच में सप्ताह और महीना होता ही नहीं है। उसके भी कारण है, परंतु समय इशारा दे रहा है इसीलिए लंबा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट कर रहा हूं। हाँ, ये नया साल आया, हाँ वो मैं बता रहा हूं। अब देखिए, देखिए वहां पर दिन रात होते हैं क्योंकि पहली गति होती है, दूसरी गति इसलिए साल भी होता है, परंतु सप्ताह और महीना बीच में नहीं होता है। उसका कारण अलग है, फिर कभी मौका मिलेगा तो सुनाएंगे। अभी देखिए, अब ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा भाई कब नया साल शुरू हुआ कब पुराना गया, परंतु फिर भी प्रकृति एक ऐसी व्यवस्था वहां देती है जिसके आधार से पता चलता है कि पुराना साल गया और नया आया। वो क्या है? वहां पर एक विशेष प्रकार के फल और फूल हुआ करते हैं जिसको पकने में साल भर लग जाता है, अर्थात तो वो फल फूल साल में एक ही बार आता है। जब वो फल फूल सामने आता तब पता चलता है कि पुराना साल गया और नया शुरू हुआ। अब अगला परिवर्तन ये होगा, क्योंकि स्वर्ग है ना, सुख की दुनिया है ना, तो ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस ईश्वरीय ज्ञान को समझना पड़ेगा और जीवन में धारण करना पड़ेगा। अभी मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूं, ऐसे बातें बहुत हैं। स्टॉप करूं क्या यहीं, है ना, आपका टाइम वैसे हो गया है तो यहीं स्टॉप 15 मिनट करूं और ठीक है, वो हो जाएगा 15 मिनट में पूरा हो जाएगा, मैं जल्दी जल्दी पूरा कर देता हूं। अब देखिए आगे का इंटरेस्टिंग बहुत फैक्ट है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ये हुई, अगला परिवर्तन ये होगा कि जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो गई, तो तुरंत अगला परिवर्तन यह होगा कि पृथ्वी के चारों जो चांद घूमा करेगा उसकी सेटिंग ऐसी सेट हो जाएगी कि सतयुग में रोज रात्रि को पूर्णिमा होगी, रोज पूर्णिमा। अभी महीने में एक दिन पूर्णिमा हो रही, सतयुग में रोज पूर्णिमा। सतयुग त्रेतायुग में न तो अमावस्या होता है और न ही ग्रहण लगते हैं, यहां पर ग्रहण भी नहीं लगते, अमावस्या भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आत्मा 16 कलश संपूर्ण पवित्र है, तो प्रकृति भी 16 कलश संपूर्ण सुखदायी है। और उसका साइंटिफिक रीजन, उसका वैज्ञानिक कारण यह है कि क्यों रोज पूर्णिमा होगी। देखिए, जैसे पृथ्वी 0 डिग्री सीधी खड़ी हो गई तो तुरंत पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होते ही उसका भी कारण है, वो मैं अभी नहीं ले रहा हूं अब शॉर्टकट करने के कारण। तो जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई तो तुरंत चांद एक झटके से पीछे आ गया, क्योंकि आकर्षण कम हो गया। और उस झटके के कारण दो काम एक साथ होते हैं। पहला काम यह होता है कि आजकल पृथ्वी के जितने भी देशों ने चांद में खोज करने के लिए चंद्रयान जैसी मशीनरी भेजी है, तो वो सारी मशीनरी उस झटके के कारण चांद के ऑर्बिट के बाहर फेंका जाएगा और सब के सब वापस पृथ्वी पर आ जाएंगे। यस, क्योंकि परमात्मा ने कहा है कि हर कल्प की हर घटना हुबहू रिपीट होती है, तो अगले 5-7 साल में जो इस कल्प का चंद्रयान गया, अगले कल्प में उसी चंद्रयान को जाना है जो चंद्रयान अभी गया था, तो उसको वापस तो आना पड़ेगा, तो कैसे आएगा? तो जैसे पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होगी, चांद झटके से पीछे आया, और झटके के कारण पहला काम यह हुआ कि जितने भी चांद में पृथ्वी के मशीनरी है, वो पृथ्वी की चीजें, वो सब आपके सब वो फेंक देगा और वापस के वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। दूसरा काम यह होगा, उस झटके के कारण चांद ऐसा पलटी खा करके सेट हो जाएगा कि आजकल पूर्णिमा के दिनों में आपने चांद में देखा होगा कि काले धब्बे दिखाई देते, बड़े बड़े काले धब्बे, वो चांद के बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो सतयुग त्रेता युग में वो गड्ढे गुड्ढे दिखाई नहीं देते, उसका ऑपोजिट एरिया प्लेन एरिया ही दिखाई देता है। यही कारण होता है कि सतयुग त्रेता युग में चांद सबसे ज्यादा रोशनी देता है, क्योंकि गड्ढे रोशनी सोख लेते हैं और प्लेन एरिया फुल लाइट रिफ्लेक्ट करता है। तो हमको दो कारण मिल गए, एक तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो गई, दूसरी चांद की थोड़ी दूरी बढ़ गई। इन दोनों कारणों के प्रभाव के फलस्वरूप पृथ्वी के चारों जो चांद की घूमने की जो गति है, उसकी स्पीड है, इतनी धीमी हो जाती है जैसे चांद पूर्णिमा के स्थिति में रुक गया हो। वास्तव में रुकता नहीं है, पर उसकी वेलोसिटी इतनी नेग्लिजिबल है कि रुकने के ही बराबर है। यही कारण होता है कि सतयुग में रोज पूर्णिमा। देखिए, हम सब जानते हैं कि आजकल चांद को पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में 29.5 दिन लगते हैं। 29.5 डेज में चांद पृथ्वी का आजकल एक पूरा चक्कर लगा लेती है। उसी के कारण ही महीना बनता है ना? इसलिए कोई महीना छोटा, कोई महीना बड़े हो जाता है। जब सतयुग में रोज पूर्णिमा होगी तो महीना होने का प्रश्न ही नहीं है भाई, महीना तो पूर्णिमा के हिसाब से होता है ना, इसलिए महीना नहीं होता है। अब देखिए, परंतु आजकल पूर्णिमा के तीसरे चौथे दिन ही आपको चांद में कट दिखाई देगा, अर्थात चांद की दो कला कम दिखाई देगी पूर्णिमा के तीसरे चौथे दिन ही। परंतु यहां सतयुग में क्या होता है, सतयुग के शुरू में आत्मा 16 कला संपूर्ण पवित्र है, तो चांद भी 16 कला संपूर्ण है। 1250 साल बाद जब त्रेता युग शुरू होता है, तब आत्मा की दो कला कम होती है तो चांद की भी दो कला कम होती है। तो यहां पूर्णिमा के तीसरे दिन ही दो कला कम, यहां 1250 साल बाद दो कला कम, तो चांद की कितनी धीमी गति होगी आप अंदाजा लगाइए, है ना? अब देखिए, अब ये हुई सुख की दुनिया, आत्माओं से भी सुख तो प्रकृति से सुख। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब पॉजिटिव साइकिल पूरा करके 2500 साल बाद जब ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है, तो यहां भी एक नेगेटिव परिवर्तन आता है। वो कैसे आता है और क्या आता है, देखिए, हमने देखा कि सतयुग के शुरू में पृथ्वी की मैक्सिमम जमीन अंदर एक विशाल भूखंड के रूप में है, तो उसी समय से पृथ्वी के भूगर्भ केंद्र बिंदु में गर्मी और गैस पकना शुरू हो जाता है, हीट एंड गैस डेवलप होना शुरू हो जाता है, और वही गर्मी और गैस का प्रेशर और एरिया अंदर, पहले तो नेग्लिजिबल होता है, धीरे धीरे उसका प्रेशर और एरिया अंदर अंदर बढ़ने लगता है। त्रेता के अंत तक, 2500 साल के अंत तक वही गर्मी और गैस का प्रेशर अंदर अंदर इतना बढ़ चुका होता है कि पूरी पृथ्वी अंदर अंदर एक गैस सिलेंडर बन चुकी होती है, परंतु वो गैस का प्रेशर त्रेता के अंत तक नहीं निकल पाती, क्योंकि उस जमीन की जो बाहरी परत है बहुत मोटी और हार्ड होता है। परंतु जैसे ये लीडिंग नॉर्थ पोल ये नेगेटिव साइकिल में प्रवेश करता है, तो उस समय वहां पर मौजूद आत्माओं के अंदर नेगेटिविटी प्रवेश हो जाता है, नेगेटिविटी माना विकार, और वही नेगेटिव वाइब्रेशन यहां के संपूर्ण सतो प्रधान पवित्र प्रकृति को सहन नहीं होता है। उदाहरण के लिए, एक अमृत का कलश है, एक बूंद जहर डाल दीजिए पूरा अमृत जहर बन जाएगा, पूरा तपेला दूध भरा एक बूंद नींबू डाल दीजिए पूरा दूध फट जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सतो प्रधान पवित्र प्रकृति में जब पहली बार नेगेटिव वाइब्रेशन मिक्स होता है, जब फर्स्ट टाइम नेगेटिव वाइब्रेशन पवित्र प्रकृति में मिक्स होता है, तो सतो प्रधान प्रकृति में एक बहुत बड़ा हलचल पैदा हो जाता है। और यही कारण होता है कि नेगेटिव साइकिल शुरू होते ही सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आता है, सबसे पहला और सबसे बड़ा भूकंप आते ही पूरी जमीनों में ऊपर से नीचे तक दरार पड़ जाते हैं। दरार पड़ते ही अंदर जो गर्मी और गैस का प्रेशर बढ़ चुका था, उसको निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे रास्ता मिलता है, इतनी भयंकर तेज गति से वो गैस का प्रेशर बाहर निकलता है कि अंदर की पूरी एक खंड जमीन को फाड़ देता है, एक भयंकर आंतरिक विस्फोट होता है। और उसी आंतरिक विस्फोट के कारण अंदर की जो एक खंड जमीन थी वो टुकड़े टुकड़े में बट के चारों ओर बिखर जाता है और समुन्द्र के सतह पे आ जाता है और फिर से सातों महाद्वीप का पुनः निर्माण होता है। सेवन कॉन्टिनेंट फिर से बन गए और उसी के पैरेलल में जो अंदर गर्मी का परिसर है चारों तरफ ज्वालामुखी के रूप में निकलने लगते हैं और उन्हीं ज्वालामुखियों के द्वारा बड़े बड़े विशाल पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण होता है, जैसे हिमालय, आरावली, विंध्याचल आदि आदि। इतने बड़े बड़े पहाड़ सतयुग त्रेता युग में होते ही नहीं। अभी भी आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि हमारे पृथ्वी पर जितने ज्यादा से ज्यादा देश मौजूद है मैक्सिमम कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर है, है ना, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा है। और जितने भी बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाएं वो भी भूमध्य रेखा के ऊपर है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। इसका मतलब ये हुआ कि त्रेता के अंत में आंतरिक विस्फोट के दौरान ज्यादा से ज्यादा जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी भारत की भूमि इक्वेटर के ऊपर होता है, उत्तरी गोलार्ध के तरफ होता है और जमीन जमीन को अट्रैक्ट करता है, खींचता है। इसीलिए उस भयंकर विस्फोट के दौरान ज्यादा से ज्यादा जमीन नॉर्थ पोल की तरफ खिसक गई। खिसकते नॉर्थ पोल भारी हो गया, भारी होते पृथ्वी इम्बैलेंस हो गई। इम्बैलेंस होते सतयुग त्रेता युग में जो जीरो डिग्री सीधी खड़ी थी एक ही झटके में फिर से 23 डिग्री झुक गई क्योंकि पृथ्वी इम्बैलेंस हो गई। जैसे पृथ्वी 23 डिग्री झुकी तो तुरंत पृथ्वी का ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब हो गया। पृथ्वी का ओरिजिनल सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होते ही सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटना बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब सतयुग त्रेता युग में जो ऑर्बिट गोल हुआ करती थी नेगेटिव साइकिल शुरू होते ही फिर से चपटी हो गई। इलेक्ट्रिकल चपटी होते ही अलग अलग मौसम बनना शुरू हो गया। तो यहां से लेकर के कलयुग के अंत तक पूरे नेगेटिव साइकिल के दौरान लगातार कहीं ना कहीं भूकंप ज्वालामुखी फटते रहते और यही कारण होता है यहां पर अलग अलग समय पर अलग अलग देशों में अलग अलग सभ्यताओं का उदय भी हुआ और विलय भी हो गया। अब यही लीडिंग नॉर्थ पोल जब नेगेटिव साइकिल पूरा करके जब फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा तो यहां पर फिर से इस वर्ल्ड ऑर्डर की रीसेटिंग होगी। हमने देखा कि त्रेता के अंत में इंटरनल एक्सप्लोजन के कारण जमीन बिखर गई तो रीसेटिंग के दौरान उन्हें बिखरी हुई जमीनों को फिर से इकट्ठा होना है। वो कैसे होगा? उसके लिए चाहिए एक्सटर्नल फोर्स। भाई इंटरनल फोर्स से जमीन बिखर गई तो उसका बटोरने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, वो कहां से आएगा? उसी के लिए ठीक सही समय पर ड्रामा प्लान अनुसार हमारे वैज्ञानिकों ने एटॉम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब आदि आदि बनाए और हम सभी जानते हैं ये एक दो तो है ही नहीं, कितने देशों में आवश्यकता से अधिक है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं जब ये लीडिंग नॉर्थ पोल फिर से पॉजिटिव साइकिल में प्रवेश करेगा उससे ठीक पहले इस पृथ्वी पर फिर से परमाणु युद्ध होगा और उसी परमाणु युद्ध के दौरान सातों के सातों भूखंड की जमीन फिर से बटोर करके इकट्ठी हो जाएगी और फिर से हमारी पृथ्वी बैलेंस होकर सीधी खड़ी हो जाएगी और सचित आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से हर 5000 साल बाद इस सृष्टि की ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक घटनाएं एवं खगोलीय घटनाओं की हूबहू पुनरावृत्ति होती रहती है। ओम शांति।